ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सब आत्माएं इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स हो। हर आत्मा रूपी एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रही है, तो तुम भी अपना पार्ट बजा रहे हो। तो जबकि सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और जो करेगा सो पाएगा, तो तुम दूसरों को क्यों देखते हो? हर आत्मा एक्टर है, उसको अपना अपना पार्ट बजाना है। उसका जो पार्ट होगा वो बजा रहा है, तो तुम दूसरों को क्यों देखते हो? होता है ना, पर चिंतन करना, पर दर्शन करना, ये है दूसरों को देखना, दूसरों के बारे में सोचना। लेकिन तुम अपने पार्ट को देखो, मैं क्या कर रहा हूं। अगर कोई एक्टर दूसरों के पार्ट कोई देखता रहे और उसका क्या पार्ट है वो देखे ही नहीं, तो ठीक पार्ट बजा सकेगा? क्योंकि दूसरों को ही देख रहा है। फिर दूसरा मिसाल बाबा देते हैं, कोई धावक होता है, रेस चल रही है। अगर वो रेसर जो धावक है वो दूसरों को देखता है, वो कैसे दौड़ रहा है, वो कैसे दौड़ रहा है, तो वो दौड़ पाएगा? वो तो पीछे ही रह जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, ये बेहद का ड्रामा है, इसमें हर एक को अपना अपना पार्ट देखना है, दूसरे को नहीं देखना है। दूसरे को देखेंगे पीछे रह जाएंगे, दूसरे को देखेंगे कैसे दौड़ रहा है, तो आप कभी भी पहला नंबर नहीं आ सकेंगे। इसलिए आज बाबा ने कर्मों की गुह्य गति बताते हुए ये हमें लक्ष्य दिया है, बच्चे दूसरों को मत देखो, जो करेगा सो पाएगा। अगर ये बुद्धि में होगा तो हर एक आत्मा का पार्ट हम साक्षी दृष्टा होके देखेंगे, क्यों क्या में नहीं जाएंगे। तो आज बाबा का मुख्य इशारा इसी पर है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 11/7/2026 है। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं। दूसरे का नहीं करना है चिंतन। क्यों? क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वो पाएगा। कर्मों की गति तो हर एक जानता है, तो इसीलिए दूसरों का चिंतन नहीं करना है, दूसरों को नहीं देखना है, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा सो पाएगा। ये कितनी बड़ी कर्मों की गुह्य गति है ना। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? बाबा ने हमें तीनों कालों का ज्ञान दिया है, तो त्रिकालदर्शी बनने से हमें क्या क्या स्मृतियां आई है? बहुत स्मृतियां आ जाती है ना त्रिकालदर्शी बनने से, तो कौन सी स्मृति आई है हमें? उत्तर है, आत्मा को स्मृति आई है। कौन सी? हम असुल मूल वतन के निवासी है। पहली स्मृति तो ये आई, हम यहाँ के रहवासी है ही नहीं, हम तो असुल मूल वतन के रहवासी हैं, और इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। ये भी स्मृति आई है, पार्ट बजाने आए हैं, ये हमारा घर नहीं है। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया है, ये भी स्मृति आई है। अभी बाप के सम्मुख हैं, फिर साथ में घर जाएंगे, ये भी स्मृति आई है, यहाँ रहना भी नहीं है। पाठ बजाया 84 जन्मों का, अभी घर जाना है वापस। फिर साथ में घर जाएंगे, पर कैसे जाना है? पावन बनकर घर जाना है, ये भी स्मृति आई है। उस पावन घर से आए थे तो पावन थे, फिर यहाँ के पतित बने, अब फिर पावन होकर ही घर जाना है, ये भी स्मृति आई है। और फिर और क्या स्मृति आई? फिर सुख धाम में आना है, ये भी स्मृति आई है। ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है, ये सारी स्मृति कैसे आई? त्रिकालदर्शी बनने से आई। जब तक त्रिकालदर्शी नहीं थे तब तक ये स्मृति भी नहीं थी, हम कहाँ से हैं, क्यों हैं, क्या करने आए हैं, कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं था। लेकिन अब त्रिकालदर्शी बन गए तो सारी स्मृतियां हमें आ गई हैं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी ये दुनिया तेरी गली में। बहुत ऐसा सुंदर गीत है। ओम शांति, ये गीत किसने गाया? बच्चों ने गाया। क्या कहते हैं बच्चे? हाँ, बाबा गली कभी नहीं कहते थे, बाबा क्या कहते थे? गले में। क्या गाया बच्चों ने? क्या कहते हैं बच्चे? बाबा अभी तो आपके गले का ही हार बनना है, मरना तेरी गले में, जीना तेरे गले में, अब तो बाबा आपके ही गले का हार बनना है। ये शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है, गले का हार बनना माना वापस घर जाना, बाबा के रुद्र माला जो बाबा के गले का हार है उस माला में पिरोना, ये लक्ष्य है। ये शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। बच्चे जानते हैं शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहते हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे, दिलाई थी स्मृति बाबा ने, तुम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे। फिर क्या हुआ? फिर ये शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्र लगाया। बच्चे जानते हैं हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं, अब फिर बाबा आए हैं। तुम बैठे हो, कहाँ बैठे हो? देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। हिस्ट्री हॉल का दृश्य निकालो, हम बैठे हैं नीचे और बाप दादा क्लास में आ गए, तो तुम बैठे हो, देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ है लौकिक शरीर का संबंध, दुनिया में लौकिक शरीर का संबंध है, हम तो असल में आत्माएं थी। फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो तो बाप भी तीनों कालों तीनों लोकों को जानने वाला है। अभी तुम अभी जानते हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, तीनों लोकों को तीनों कालों को जो भी स्मृति बाबा दिलाते हैं तुम सब नंबर वार जानते हो। पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना, अभी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है तो मूल वतन में रहने वाले हो। अभी तुम बाप दादा द्वारा त्रिकालदर्शी बने हो। तुम जानते हो इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं, जानते हैं ना सब, क्योंकि शुरू से हमारा पार्ट है, जो मुख्य एक्टर होता है उसका शुरू से ही पार्ट होता है। इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। स्मृति आई है, हम आधा कल्प सुख धाम में रहते हैं, वहां रावण होता नहीं। ये सब स्मृति आई है हमें, वहां रावण होता नहीं। हम आत्माएं पूरे 84 जन्म का चक्र लगाते हैं, अभी बाप सम्मुख बैठे हैं। आपकी श्रीमत पर चल, हम बाबा को क्या कहते हैं, बाबा हमारे सम्मुख बैठे हैं तो हम बाबा को कहते हैं बाबा। हम आपकी श्रीमत पर चल, आपके साथ चलेंगे। सभी बाबा को यही कहते हैं ना, हम आपकी श्रीमत पर चल, आपके साथ चलेंगे। तो जितना हो सके आपको याद करेंगे। तो तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल में रहना चाहिए, जबकि त्रिकालदर्शी बने हो तो त्रिकालदर्शी बने हैं तो यही ख्याल चलने चाहिए। ऊंच से ऊंच है भगवान, उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंच से ऊंच रहने वाले हो। हम बच्चे भी ऊंचते ऊंच हो गए ना, क्योंकि उस ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं। ऊंचते ऊंच रहने वाले हो। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है, हम पवित्र बन अपने परम धाम घर जाएंगे। बाप शिव की पूजा होती है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक बाप ही है और कोई नहीं, और कोई भी आत्माओं को पवित्र बना नहीं सकता। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, तुम समझते हो। खेल को जान लिया तो क्या समझते हो, तुम समझते हो कि भारत पर ही ये खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। हरेक जीव की आत्मा जानती है कि बाबा ज्ञान का सागर है, उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए, बुलाते ही नहीं आए हैं, लेकिन साथ साथ प्रतिज्ञा भी करते आए। क्या प्रतिज्ञा करते आए हैं, बाबा आप आएंगे तो जरूर हम आपकी मत पर चलेंगे। बुलाते हैं फिर कहते हैं साथ में कि आप आएंगे तो हम आपकी मत पर जरूर चलेंगे। ये कोई लौकिक संबंध की बात नहीं है, कोई लौकिक संबंधी को नहीं कह रहे हो कि हम आपकी मत पर चलेंगे। नहीं, तुमको देही अभिमानी बन ये ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप की ही श्रीमत पर चलना है, उनको ही मानना है, उनको ही मानना है। वो तो बहुत सहज समझाते हैं, बाबा हमको बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है, ये ज्ञान तुमको यहाँ ही मिलता है। मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं, वहाँ ये किसको पता नहीं रहता। वहाँ ये पता नहीं होगा, आत्मा तो सुषुप्त अवस्था में है, हम बाबा के साथ हैं और हम सब मूल वतन में हैं, ये वहाँ भी कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि सुषुप्त आत्मा, सुषुप्त अवस्था माना आत्मा एकदम गहरी नींद में है, तो उसको ये भी नहीं पता कि हम बाबा के साथ हैं। वहाँ ये किसको पता नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं। अंत देना माना बाप जो है जैसा है वो अपना अंत बाबा ही देते हैं अपना। वही ज्ञान का सागर है, और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे, कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, भगवान हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे। ये तुम ही जानते हो, घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है। बाबा को घड़ी घड़ी बच्चों को कहना पड़ता है क्या, बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है। हम आत्मा ने चोला लिया है, ये शरीर रूपी चोला लिया है, पर इस चोले से मैं अलग हूँ। तो बाबा को बार बार याद दिलाना पड़ता है। वो एक्टर्स तो केवल कपड़े बदलते हैं, शरीर नहीं बदलते। हम तो शरीर रूपी कपड़ा बदलते हैं ना आत्मा। वो एक्टर्स ड्रामा में पार्ट बजाने आते हैं, कई रोल बजाते हैं उस एक ड्रामा में भी। तो एक कपड़ा पहन के एक रोल बजाया, फिर दूसरा, फिर कपड़ा पहना और रोल बजाया। खाली कपड़ा उतारते हैं बस, हम तो शरीर उतारते हैं। तो बाबा कहते हैं वो एक्टर्स तो कपड़े बदलते हैं और तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर ये शरीर रूपी चोला लेती हो। वो सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं। हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर राज योग सिखा रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, क्या समझते हो, बाबा आया हुआ है तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। पहले पुकारा, पति पावन आओ, फिर बाबा आए, फिर बाबा को हमने कहा बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे। फिर श्रीमत पर चलेंगे तो साथ में क्या कहा, बाबा हम आपके मददगार जरूर बनेंगे। पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे, किया है ना ये वायदा। हम पवित्र बन सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर ही चलना है। तो श्रीमत क्या कहती है, श्रीमत कहती है बाप को याद करना है। अब जो करेगा सो पाएगा, सब तो नहीं आकर के पुरुषार्थ करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। अभी वापस जाना है इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, अब फिर स्मृति आ गई, हम पहले पहले स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। बाप समझाते भी भारतवासियों को है, भारत में ही आते हैं, याद भी भारत में करते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। पतित पावन, पतित पावन, ये भारत में ही गायन है ना, और धर्म वाले ऐसे नहीं गाते हैं, भारत में ही ये गाते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ, है ना, शरीर धारण कर रूप बदल कर आओ, माना शरीर धारण कर आप आकर हमें श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है, कौन, जिस रथ का आधार लेते हैं बाबा उस शरीर का भी नाम गाया हुआ है, ये भाग्यशाली रथ है। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, आगे भी कहा था, कल्प पहले भी कहा था, गीता में है। क्या कहा था कल्प पहले, तुम बच्चों को स्मृति आई है, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था कि मैं रूप बदल कर आता हूँ, मैं आता हूँ, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। तो कैसे आता है, वो तो निराकार है, तो रूप बदल कर आता है, बाबा ने यही कहा था। और कोई भी ये बात बता नहीं सकते हैं कि कैसे रूप बदल कर आता है, किस मनुष्य तन में आता है। बाप ही कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैंने इसी शरीर में आकर तुमको समझाया था, अब फिर तुम बच्चों को कहता हूँ, इसी शरीर में आकर समझाया था, अब फिर तुमको कहता हूँ आत्म अभिमानी बनो। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना, हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाते हैं, हर एक्टर को पता है मुझे अभी कौन सा वस्त्र पहन करके पार्ट बजाना है। तो हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाते हैं ये हर एक्टर को नाटक में वो जानता है, परंतु वो तो है देहाभिमानी। वो जो ड्रामा में पार्ट बजाते वो तो देहाभिमानी है, वो हद का ड्रामा करते हैं। अब ये है बेहद की बात, ये बेहद का ड्रामा है। तो देही अभिमानी बनना है, हम असुल आत्मा ही है। वो एक्टर भले भिन्न भिन्न रोल बजाते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हुए भिन्न भिन्न वस्त्र पहनते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व को तो नहीं भूलते ना। वो तो जानते हैं मैं वास्तव में कौन हूँ, भले पार्ट अलग अलग बजाया, लेकिन हम तो अपना अस्तित्व ही भूल जाते हैं। हम आत्मा ये तो भूल ही जाते हैं और देह को ही खुद समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनना है, हम असुल आत्मा ही हैं, अभी हमारा पाठ पूरा होता है। बाप सम्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं, ये भूल नहीं जाना है। माया कितनी विघ्न डालती है, हाँ भुला देती है ना, माया तो कितने विघ्न डालती है। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना है, मनसा तूफान तो बहुत आएंगे, ऐसे माया छोड़ेगी नहीं, पछाड़ेगी माया तो मनसा तूफान तो बहुत आएंगे। तो अपनी परीक्षा लेनी है, अपनी परीक्षा लेनी है। क्या परीक्षा लेनी है? कि वो तूफान कर्म में ना आए, बस ये जरूर अपने आप को बताना है। ये बंदर खेल कर रहे हैं ऊपर। अपनी परीक्षा लेनी है, हमारी कर्म इंद्रियां चलायमान तो नहीं होती है, हम काम को जीत सकते हैं। तो तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, काम विकार को जीतना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो हम आत्मा है, तो आत्मा समझकर आत्मा को देखते हैं तो देह तरफ ध्यान नहीं जाता, तो काम विकार को जीतना सहज हो जाता है। हम आत्मा है, एक बाप के बच्चे हैं, बाप से ही योग लगाना है। कर्म इंद्रियों में चलायमानी होना, कर्म इंद्रियों में चलायमानी होना, ये भी देहाभिमान हुआ ना। कर्म इंद्रियां तो हमारी एकदम शीतल होनी चाहिए, परंतु चलायमानी होती है, चंचल होती है कर्म इंद्रियां, ये भी देह अभिमान हुआ ना। तुमको कोई अभी नेक्स्ट पॉइंट, तुमको कोई से भी डरना नहीं है, डरना नहीं है, निर्भय बनना है। कभी भी कहां जाओ तो साक्षी हो देखना है। कई समझते ना, नहीं हम बाहर नहीं जाएंगे, वहां माया बहुत है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, हम कैसे नहीं जाएंगे, दुनिया में रहते हैं तो जाना तो पड़ता है। लेकिन बाबा कहते हैं साक्षी हो देखना है, हम तो आत्मा हैं। इस खेल को तुम पूरा जान गए हो, ऊंच से ऊंच बाप है, ये बुद्धि में आया है, उनको बिंदी कहा जाता है। बाबा क्या है? बिंदी है बाबा, उनको बिंदी कहा जाता है। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है। अब झाड़ कैसे निकलता है, कैसे निकलता है झाड़? बाबा कहते हैं बीज से झाड़ निकलता है। कोई भी झाड़ होता है वो निकलता कैसे है? बीज से झाड़ निकलता है, और फिर नंबर वार पत्ते आते हैं, ऐसे नहीं सारे पत्ते एक साथ आ जाते हैं, नंबर वार पत्ते आते हैं। ये भी ऐसे है, ऊपर से नंबर वार आत्माएं आती है। आत्मा प्रवेश कैसे करती है, निकलती कैसे है, ये कोई देख न सके। कोई कहे मैं देखूं, लेकिन पता नहीं चलता, बस आत्मा निकल गई, आंखें बंद हो गई, जड़ता आ गई शरीर में, बस इतना ही पता चलता है। निकलती कैसे है, आती कैसे है, ये कोई देख न सके। अब बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, उनको पावन बनाओ। प्रतीत हो गई है, पावन बनाओ से। इन द्वारा बाप बैठ समझाते हैं, बात तो कर्म इंद्रियों से ही करते हैं ना। आत्मा बिंदी इसमें नहीं होती तो कर्म इंद्रियां कुछ भी कर नहीं सकती। कितनी कमाल है, उस छोटी सी बिंदी आत्मा की वो निकल गई, ये कर्म इंद्रियां कुछ भी कर नहीं सकती। इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल है, सोचो तो सही। इतनी छोटी सी बिंदी कितनी पावरफुल है, उनमें सारी नॉलेज है। बाप ज्ञान का सागर है जो तुमको बैठ समझाते हैं। उनमें ज्ञान का सागर है, वो हमको समझाते हैं, उनमें ही सारा ज्ञान है। ये भी उनका पार्ट नूंदा हुआ है, जो ज्ञान उनमें है वो ज्ञान देना है उनको, ये भी उनका पार्ट नूंदा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पार्ट है। तुम दुख सुख का पार्ट बजाते हो, दुख में बहुत तकलीफ लेते हो। बाप कहते हैं, मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूँ। किस बात की युक्ति बताता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। क्या युक्ति है? तो मुझे याद करो, बस, तो तुम पावन बन जाएंगे। आधा कल्प तुम काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हो। अब ये आत्माओं से ही बाप बात कर रहे हैं, शरीरों से नहीं बात कर रहे कि तुम आधा कल्प विकारों के वश पतित बन गए हो, फिर अभी पावन बनना है। शरीरों से बाबा बात नहीं करते हैं। आत्माओं से बाप बात करते हैं। आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं, आत्मा ही कहती है हे पतित पावन आओ। आत्मा ही बाप को पुकारती है, तो बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम पतितों को पावन बनाने। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे जाती है। मनुष्य बहुत माथा मारते हैं कैसे निकलती है आत्मा शरीर से, मनुष्य उस बहुत माथा मारते हैं, देखे आत्मा कैसे निकलती है, परंतु किसको भी पता नहीं पड़ता है। पता है क्या, किसने देखा है कभी? अभी शरीर छोड़ते हुए तो देखा होगा ना, जिन्होंने शरीर देखते छोड़ते हुए भी किसी को देखा नहीं है, आत्मा उसके सामने बैठे और वो आत्मा ने शरीर छोड़ा, देखा ही नहीं है कभी, वो हाथ उठाओ। अच्छा, थोड़े से हैं, बाकी सब ने देखा है आत्मा कैसे निकल जाती, पर दिखाई देती है? कुछ भी दिखाई नहीं देता। परंतु किसको पता नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि वो अति सूक्ष्म है। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। हाँ देखो कैसा वंडरफुल, आत्मा निकल गई शरीर मुर्दा एक सेकंड में, जैसे अभी चुरपुर हो रही थी, बहुत कष्ट सहन कर रहे और आत्मा निकल गई एकदम शांत। हाँ, वंडर है। तो बाबा कहते हैं, परंतु किसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि ये है अति सूक्ष्म। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। जैसे बीज में सारा ज्ञान है, अब वो बीज तो जड़ है, सारे झाड़ का वो बीज में पूरा ज्ञान है या पूरा सार है, अब वो तो जड़ बीज है। बड़ का झाड़ होता है, उसका बीज तो कितना छोटा होता है और कितना बड़ा झाड़ बन जाता है बड़ का झाड़। बीज तो कितना छोटा होता है, उनसे झाड़ कितना बड़ा लंबा निकलता है। कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कईयों ने देखा होगा, देखा है? जिन्होंने कलकत्ते का बड़ का झाड़ देखा है हाथ उठाओ। अच्छा, थोड़ों ने देखा है, बाकियों ने नहीं देखा है। बाबा कितना वर्णन करते हैं उसमें, जो 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 थुर है वो तो सड़ गया है, बिल्कुल सड़ गया। हम गए थे जब कलकत्ता, तो हमको दिखाया था किसने, तो मैंने कहा मुझे वो जो सड़ गया है थुर वो दिखाओ। तो बिल्कुल हमको ले गए थे, बहुत लंबा चले हम अंदर ही अंदर, क्योंकि बहुत लंबा है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। तो हम एकदम अंदर गए और वो हमको दिखाया, वो थुर दिखाया, माना थोड़ा सा जैसे थुर होता है ना झाड़ का तना, थोड़ा सा तना था, कटा हुआ था। पर कहा कि अभी इनके जो जड़े यहाँ की सब सड़ गई है, परंतु जो झाड़ की डालियां हैं उन डालियों से जड़े निकलती है और वो जाके जमीन में पड़ती है, तो वो अलग अलग जैसे वृक्ष बन जाते हैं। और इतना आपस में जुड़े हुए, इतना जुड़े हुए हैं, पता भी नहीं चलता है। और इतना सारा बड़े से बड़ा है, तो बड़ा विचित्र है। तो और एक परंतु विशेषता उसकी क्या है कि वो पूर्व की तरफ ही बढ़ता है, पश्चिम की तरफ ही बढ़ता है, पूर्व की तरफ ही वो बढ़ता है। पश्चिम की तरफ तो दरवाजा है, तो अगर उस पेड़ को देखना है तो पश्चिम की तरफ से आओ तो आप शुरुआत से देख सकते हो, पर पूर्व की तरफ आएंगे तो बहुत बड़ा है, तो उसका वो नहीं समझ सकेंगे। तो ये भी देखो वंडर है, पूर्व की तरफ ही वो, और वो तो बहुत जग जमीन है, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कईयों ने देखा होगा, बहुत बड़ा झाड़ है। अब उनका फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है। ये भी ऐसे, ये कल्प वृक्ष भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे है। देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, वो थुर जो है देवता धर्म का वो है नहीं। झाड़ की भी अब जर्जरी भूत अवस्था है, ये भी तुम जानते हो। तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हो, हम गवर्नमेंट को क्या कहते हैं कि हम इतने समय में दुनिया को पावन बनाकर दिखाएंगे, मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। तुमको तो निश्चय है कि हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे, तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। श्रेष्ठाचारी बनाएंगे, वो श्रेष्ठाचारी बन जाएगी तो जरूर भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। ये जो चाहते हैं शांति हो जाए, शांति हो जाए, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है। शांति चाहते है माना आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, तो कहती शांति चाहिए, इसलिए पुकारती है, हे शांति देवा। ये थोड़ी समझते हैं, पुकारते हैं पर क्या नहीं समझते हैं? क्यों पुकारते हैं? क्या नहीं समझते हैं कि आत्मा का तो है ही स्वभाव शांति। अगर ये समझ जाए तो पुकारेंगे थोड़ी, क्योंकि अंदर झांकेंगे बस, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, पुकारेंगे नहीं भगवान को। ये परंतु ये थोड़ी समझते कि आत्मा शांत स्वरूप है, परंतु यहाँ आत्मा को कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म तो जरूर करना है। भले आत्मा शांत स्वरूप है लेकिन कर्म इंद्रियों से कर्म तो करना ही है। शांति दो कहते हैं, ये किसको भी पता नहीं है कि शांति धाम अलग है और सुख धाम अलग है। ये भी नहीं जानते कि मेरा ही स्वधर्म शांति है तो मांगने की चीज ही नहीं है, और दूसरा ये भी नहीं जानते कि हमारा धाम तो शांति धाम है। तो बाबा कहते शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है, ये भी नहीं जानते। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वो है ही पवित्र दुनिया, वहाँ शांति तो कोई मांगेंगे नहीं। सतयुग में कोई शांति मांगेगा क्या? हाँ शिव बाबा शांति दो, कोई देवता मांगेगा नहीं, वहाँ शांति तो कोई मांगते नहीं। कर्म तो वहाँ भी करते, कर्म को छोड़ते नहीं है सतयुग में, लेकिन शांति कोई नहीं मांगेगा वहां। कर्म तो वहां भी करते हैं, परंतु वहां अशांति होती नहीं। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग अलग है। ये बाबा को क्यों कहना पड़ता है, क्योंकि दूसरे धर्म वाले अलग अलग नहीं समझते हैं। वो समझते भगवान स्वर्ग में रहता है और वो स्वर्ग ऊपर है, तो इसलिए परम धाम को ही स्वर्ग समझते हैं। परंतु बाबा ने स्पष्ट किया है, स्वर्ग तो धरती पर है, परम धाम तो अलग है, वो ऊपर है। तो जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग है। सतयुग में जीव आत्माओं को सुख भी है तो शांति भी है, एवर हेल्दी भी है तो एवर वेल्दी भी है। सतयुग में जीव आत्माएं उनको सुख भी है, शांति भी है, एवर हेल्दी भी है, एवर वेल्दी भी है। अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है? दुनिया में ये भी किसको पता नहीं है कि स्वर्ग है क्या चीज। हमने एक पादरी से पूछा था, क्रिश्चियन पादरी से, कि आप कहते हो भगवान स्वर्ग में है, तो भगवान स्वर्ग में क्या कर रहा है, भगवान स्वर्ग में रहकर क्या कर रहा है? तो उसने क्या जवाब दिया, भगवान स्वर्ग में रह करके सबको देखता है हम क्या कर रहे हैं। अब बाबा को, भगवान को यही काम है कि वो हमको देखे, और हम नरक में बैठे हैं, वो स्वर्ग में बैठकर हमें देखता है। तो बाबा कहते हैं दुनिया में ये भी किसको पता नहीं है कि स्वर्ग क्या है। ये लक्ष्मी नारायण बच्चे है ना, शिव बाबा के लिए तो लक्ष्मी नारायण भी बच्चे है ना। इन बच्चों को भी सुख किसने दिया? लक्ष्मी नारायण जो बाबा के बच्चे हैं, उनको सुख किसने दिया? कोई तो सुख देने वाला है ना। क्या इनों का फिर राज्य आने वाला है? स्वर्ग जरूर फिर रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वहां ऐसे नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, सुख दो शांति दो ये तो नहीं कहेंगे, और क्या नहीं कहेंगे वहां, ये नहीं कहेंगे कि नरक फिर से रिपीट करेंगे, ये वहां नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि नरक आएगा। और नरक आएगा अगर पता हो तो वो स्वर्ग का सुख भी उनको नहीं भासेगा, इसलिए वहां ये नहीं कहेंगे कि नरक फिर आएगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि नरक फिर से रिपीट करेंगे। पर यहां नरक में है तब हम कहते हैं कि स्वर्ग आएगा, है ना, वहां नहीं कहेंगे कि नरक आएगा। अभी कहते हो पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। ये तो पुरानी दुनिया दुख धाम है, इनको आयरन एज कहा जाता है। नई दुनिया भी तो थी ना, हाँ थी जरूर, उनको स्वर्ग कहते हैं। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है, खाली बैठा हुआ नहीं है, ठहरा हुआ है। बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है, देवी देवता बन रहे हैं, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, बेहद के बाप से वर्षा जरूर पाएंगे। ये भी निश्चय है कि बेहद के बाप से वर्षा जरूर पाएंगे। ये अच्छी रीति याद करना है, हम आत्माएं वहां रहती है, फिर हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। तो अब स्मृति आई है, स्मृति आई है, कितनी बाबा ने स्मृतियां दिलाई है, अब स्मृति आई है। 84 जन्म कैसे लेते हैं? बाप समझाते हैं, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों, बाप समझाते भी तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को है, शूद्रों को नहीं समझाते हैं बाबा। तुम शूद्रों को समझा करके ब्राह्मण बनाते हो, फिर उनको बाबा की मुरली सुनाई जाती है जब वो ब्राह्मण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बाप समझाते भी तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को है, ब्राह्मण बनने बिगर प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगर, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा के बच्चे बने, तो ब्राह्मण बनने बिगर प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? तो ब्रह्मा बाबा का भी बच्चा बनना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, ब्रह्मा द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना होती है, तो नई दुनिया का राज्य भी जरूर उन्हों को मिला होगा। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की, ज्ञान दिया, तो जिन्होंने सुना वो ब्राह्मण बने, वही फिर नई दुनिया के मालिक बने होंगे, तो नई दुनिया का राज्य भी जरूर उन्हों को मिला होगा। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हुई थी, अब फिर रिपीट होगा, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। कई बच्चे पूछते हैं, अब ये प्रश्न सबका होता है हा? तो कई बच्चे क्या पूछते हैं, ड्रामा को बड़ा माने व पुरुषार्थ को बड़ा माने, पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध बड़ी है, किसको बड़ा माने? पुरुषार्थ को बड़ा माने। तो समझाया जाता है पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है, कोई कहे नहीं ड्रामा में होगा तो हो जाएगा पुरुषार्थ, परंतु ड्रामा में पुरुषार्थ है तो पुरुषार्थ करेंगे ना, चलो ड्रामा में है तो पुरुषार्थ है तो करना ही पड़ेगा ना पुरुषार्थ, ऐसे थोड़ी अपने आप हो जाएगा। तो कोई तो बाबा कहते पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है, पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे मिलेगी, पूरा पुरुषार्थ करना है, पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, इसमें फिर ये भी है पुरुषार्थ तो करना है, और कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं तो समझाया जाता है कि ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है। अब पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं, पर जरूर कर रहे हैं, इसका मतलब ड्रामा में नूंद है ना, तो ड्रामा अनुसार वो अच्छा पुरुषार्थ कर चलता है, उनका पद भी अच्छा पाएगा क्योंकि अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है। उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है, लेकिन क्या होता है फिर बाबा को लेकिन भी कहना पड़ता है, किसी का पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है लेकिन फिर चलते चलते कोई का कम पद भी हो जाता है, फिर ढीला हो जाता है। क्यों ढीला हो जाता है? दूसरों को देखना शुरू कर देता है, तो जरूर अपना पुरुषार्थ ढीला हो जाएगा ना। अच्छा चलता है, फिर चलते चलते कोई का कम पद भी हो जाता है। ब्राह्मणिया जानती है, जो टीचर्स है वो जानती है, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं किसका पुरुषार्थ तेज है किसका पुरुषार्थ ढीला है। ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल वो आता नहीं है ना। टीचर्स फिर वो फोन करती है, भाई क्यों नहीं आते हो? तो वो तो उनको उमंग उत्साह दिलाएगी ना, याद दिलाएगी ना, क्यों नहीं आते हो? अब जरूर कोई धारणा में कमी होगी, इसलिए वो थोड़ा डरते हैं कि जाएंगे तो क्या बोलेंगे, इसलिए कहीं घबरा कर आते ही नहीं है। तो परंतु टीचर याद तो दिलाएगी ना, फोन करती है तो उनको कहती है क्यों नहीं आते हो, तो बाबा कहते हैं फिर वो कोई ना कोई बहाना बता देते हैं, होगी अपनी धारणा की कमी लेकिन कोई बहाना बता देते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल आते नहीं है, कहते हैं। फिर वो ब्राह्मणी जब उनसे पूछती है कि आजकल आप क्यों नहीं आ रहे हो, तो कई सच बताते हैं, क्या कहते हैं, हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता है, हमारी बुद्धि में बैठता ही नहीं है ज्ञान, पता नहीं क्यों नहीं बैठता है, बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते हैं। फिर ऐसे कहते हैं बस हम नहीं चल सकेंगे, कई फिर सीधा जवाब भी दे देते हम नहीं चल सकेंगे, बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। तो मूल बात है ही निर्विकारी बनना है, अब वो पहुंचता नहीं है तो फिर कहते हैं हम तो चल नहीं सकते हैं। मूल बात है ही निर्विकारी बनना है, विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है, है कोई जो कहता है विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है? नहीं, इतना सहज है। हाँ, सहज है, ये मुश्किल है? जो समस्या मुश्किल है हाथ उठाओ, कोई नहीं। कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं, परंतु फिर कई कहते हैं विकारों को छोड़ना मुश्किल है, तो फिर वो आते नहीं, कि किस मुंह से आएंगे, क्योंकि विकारों को छोड़ा नहीं है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल उनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। फिर हम क्या कहेंगे, इनका भी ड्रामा में यही पार्ट है ना, साक्षी दृष्टाओं के हर एक के पार्ट को देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, इस बेहद के खेल को साक्षी हो देखना है, कैसे हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है। तो बाबा कहते हैं, बेहद के खेल को साक्षी हो देखना है, कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूं ये पाठ पक्का करना है। दूसरा, अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्म इंद्री चलायमान तो नहीं होती है, काम विकार पर विजय पाई है, देही अभिमानी कहाँ तक बनी है। हाँ, बाबा कहते हैं अपनी परीक्षा खुद लेनी है, अपनी चेकिंग करनी है, चार्ट लिखना है, देही अभिमानी कहाँ तक बनी है। वरदान, एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। हाँ, सुहाग माना जिसका पति जिंदा है, तो हमारा तो पतियों का पति है ना, तो हम तो सदा सुहागिन है। एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, क्योंकि हमको एक को ही याद करना है और कुछ भी कहे, जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा को स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते, एक बाप दूसरा न कोई इस स्मृति में रहते हैं, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। वो अविनाशी सुहाग का उसको तिलक लग गया, क्योंकि वो केवल एक बाप की श्रीमत पर चलते हैं। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। स्लोगन, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो क्या करो? अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन, फिर बाह्य मुक्ता में आओ। कोई भी कार्य करना है, पहले अंतर्मुखी हो जाओ, फिर आत्माभिमानी स्थिति बना के फिर भले कर्म में आओ। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन, फिर बाह्य मुक्ता में आओ। यह व्यक्त इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप की याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो, मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते हो, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फिर फरिश्ता से देवता बन जाते हो। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा जाता है, क्योंकि वो अपना जो स्वरूप था वो बदल गया है, अग्नि में पड़ा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज भट्टी वाले सब जा रहे हैं, सुरेंद्र भाई कहाँ हैं? सुरेंद्र भाई 2 मिनट आकर के अपना अनुभव सुनाओ। सुरेंद्र भाई आएंगे सब।